ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय संख्या 8। अध्याय का नाम है नारायण कवच। श्लोक संख्या 13 से 17। बोर्ड पर श्लोक रखकर 17 लिखी गई है, फिर हम इसका उच्चारण करेंगे। सनत कुमारो अवतु काम देवा दशीर श्यामां पति देव हेलनाथ देवारशीवर पुरुषार्च नारांतरात् कुर्मो हरिर्माम निर्याद शेषात्। सनत कुमारो अवतु काम देवा द्वशीष द्वशीष माम पाथि देवा हेलनाथ देवार्षिवार्य पुरुषचरन्तरात् कुर्मो हरिर्माम निर्याद शेषात्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सनत कुमार परम ब्रह्मचारी सनत कुमार अवतु रक्षा करें कामदेवात् कामदेव के चुंगुल से अर्थात काम वासनाओं से। हाय शीर्षा हाय ग्रीव ईश्वर का अवतार जिसका मुख घोड़े के समान था। माम मुझको पथि मार्ग में देव हेलनाथ ब्राह्मणों वैष्णों तथा परमेश्वर को नमस्कार ना करने से। देव ऋषि वर्यः देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद पुरुष अर्चन अंतरात विग्रह के पूजन में हुए अपराधों से। कुर्मः भगवान कुर्म कच्छप हरि श्री भगवान माम मुझको निर्यात नरक से अशेषात असीम। अनुवाद सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं श्री हायग्रीव मेरी रक्षा करें जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार ना करने का अपराधी ना बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध ना हो इसके लिए देव ऋषि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कुर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाएं। तात्पर्य प्रत्येक प्राणी में काम इच्छाएं प्रबल होती हैं और भक्ति मार्ग में यही सबसे अधिक बाधक हैं। अतः जो काम इच्छाओं के वश में हैं उन्हें चाहिए कि परम ब्रह्मचारी भक्त सनत कुमार की शरण ग्रहण करें। नारद मुनि अर्चना के पथ प्रदर्शक हैं और नारद पंचरत्न के लेखक हैं, जिसमें शिव विग्रह की अर्चना की विधियां दी गई हैं। चाहे कोई घर में शिव विग्रह की पूजा करे या मंदिर में, अर्चना में होने वाले 32 प्रकार के अपराधों से बचने के लिए देव ऋषि नारद के अनुग्रह की आकांक्षा करनी चाहिए। शिव विग्रह अर्चना में होने वाले इन अपराधों का उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में हुआ है। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्रसंग नारायण कवच का चल रहा है। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि स्वर्ग के राजा इंद्र से उनके गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध हो जाता है और इसके कारण सभी देवतागण अपना ऐश्वर्य खो बैठते हैं और फिर सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी इंद्र और सभी देवताओं को प्रताड़ते हैं कि आपने गुरु के प्रति अपराध क्यों किया। जब हम एक महान वैष्णव के प्रति या गुरु के प्रति अपराध करते हैं तो अपना सारा ऐश्वर्य खो बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर सभी देवताओं को परामर्श दिया कि आप विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाइए और उनके द्वारा यज्ञ कराकर अपने ऐश्वर्य को वापस प्राप्त कीजिए। विश्व रूप त्वष्टा के पुत्र हैं और आयु में इंद्र से बहुत छोटे हैं। सभी देवतागण विश्व रूप से निवेदन करते हैं कि वो यज्ञ के पुरोहित बनना स्वीकार करें। विश्व रूप सभी देवताओं के आग्रह को स्वीकार करके यज्ञ करते हैं और फिर यज्ञ से वो नारायण कवच यानी कि वो विष्णु की आराधना करते हैं और कुछ मंत्र इंद्र को देते हैं कि आप इन मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज अगले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वो नारायण कवच क्या है। परीक्षित महाराज की मृत्यु में छठा स्कंद चल रहा है, अभी 3 या 4 दिन रह गए होंगे। फिर परीक्षित महाराज बहुत उत्सुक हैं जानने को कि विश्व रूप ने इंद्र को एक कौन सा नारायण कवच दिया, उस कवच में क्या था, कैसे इंद्र की रक्षा हुई और कैसे देवताओं ने अपना ऐश्वर्य दोबारा प्राप्त किया। तो इस अध्याय में फिर सुखदेव गोस्वामी जी उस नारायण कवच की वर्णन करते हैं कि नारायण कवच में कितने तरह के मंत्र थे। इसमें 8 अक्षर वाला ओम नारायण नमः और 12 अक्षर वाला ओम भगवताय ओ नमो भगवते वासुदेवाय, इस सारे मंत्रों का मिश्रण था और किस तरह से शरीर के अलग अलग अंगों पर अपने कुशाग्रास से पानी को शुद्ध करके हम अलग अलग शरीर के अंगों पर इस मंत्र के द्वारा हम भगवान को पुकार सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो अभी तक 12वें श्लोक तक चर्चा हो गई है। 13 से लेकर 14, 15, 16 में इतना तात्पर्य नहीं था, हम उनका शब्द अर्थ पढ़ देते हैं और उसके बाद फिर हम 17वें अध्याय के तात्पर्य पर चर्चा करेंगे। 13वें श्लोक में बताया गया है, जल के भीतर वरुण देव के पार्षद हिंसक पशुओं से मृत्यु रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया से वामन का रूप धारण किया, उनका विराट स्वरूप विश्वरूप तीनों लोकों को जीतने वाला है, वे आकाश में मेरी रक्षा करें। श्लोक संख्या, इसका तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, इस मंत्र के द्वारा श्री भगवान के मत से वामन तथा विश्वरूप अवतारों से जल स्थल तथा आकाश में सुरक्षा के हेतु प्रार्थना की जाती है। श्लोक संख्या 14, हिरण्यकश्यपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नरसिंह देव मेरी समस्त दिशाओं में रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। श्लोक संख्या 15, परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी तीखी दाढ़ों में धारण किया। ऐसे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। तात्पर्य, राम 3 हैं, परशुराम, जामदग्नय, दूसरे भगवान रामचंद्र और तीसरे श्री बलराम। इस श्लोक में आगत रामो आद्रिकुटेश्व अर्थ में श्री परशुराम का संकेत है। महाराजा भरत या लक्ष्मण के भाई भगवान रामचंद्र हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। श्लोक संख्या 16, मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्य च्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाएं। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल कर्म के बंधन से मेरी रक्षा करें। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। और आज के श्लोक में सनत कुमारु अवतु काम देवा जय शीर्षा माम पति देव हेलनाथ देव ऋषि वरे पुरुषाचार्चनांतरात कुर्मो हरेरमा निर्याद शेषा। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार ना करने का अपराधी ना बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध ना हो इसके लिए देवऋषि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कुर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाएं। तो ये प्रार्थना है। और इस अध्याय के श्रुति फल में बताया गया है कि जो इन प्रार्थनाओं को सुनता है उनका उच्चारण करता है तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो हम भी इन प्रार्थनाओं के चर्चा करने में आज प्रार्थना करते हैं कि सनत कुमार हमारे पीछे बोलिए सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार ना करने का अपराधी ना बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध ना हो इसके लिए देवऋषि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कुर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाए। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति एकमात्र और पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है और कृपा के सागर हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं और उनके परम भक्त सभी वैष्णव। वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस श्लोक में नारायण कवच में बताया जा रहा है कि किस तरह से एक साधक को भगवान और भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है और भक्तों से भी प्रार्थना की जा रही है। भक्तों में सनत कुमार जी से और नारद मुनि से। तो भक्ति के मार्ग पर हम सब पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हैं और कृपा के सागर भगवान और वैष्णव हमारे लिए उपलब्ध हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूर्ववर्ती आचार्य अब हमारे सामने नहीं हैं तो हम कैसे उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ववर्ती आचार्य नित्य सिद्ध हैं और वो समय और स्थान की परिधि से बाहर हैं। वो लिमिटेड नहीं है कि आज से 500 वर्ष पूर्व षट गोस्वामी हुए थे अब हम उनसे कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि तो पता नहीं कितने युग पहले हुए थे, चार कुमार तो सृष्टि के प्रारंभ में उनकी उनका उत्पत्ति हुई थी, तो कैसे हम उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं। तो वो समय और स्थान की परिधि से बाहर है, दे आर नॉट लिमिटेड बाय स्पेस एंड टाइम। तो हमारे लिए कृपा उपलब्ध है, हमें केवल कृपा की याचना करनी है और कृपा की याचना करके हम भक्ति में बड़े से बड़े अटकलों से अड़चनों से छुटकारा पा सकते हैं। हम सबका यह अनुभव है, हम काफी समय से या कुछ समय से साधना करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करते हैं। समस्याएं आंतरिक भी हो सकती हैं और बाहरी भी हो सकती हैं। तो एक साधक के लिए एक प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है, वो प्रयास करता रहे और साथ साथ प्रार्थना करता रहे, निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में सबसे अधिक बाधक है काम इच्छाएं, काम वासनाएं। और इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति काम वासनाओं से पीड़ित है। कामम हृदय रोगम भागवत में बताया गया है, जो काम है ये हृदय का रोग है, हार्ट डिजीज है और इसके हार्ट स्पेशलिस्ट केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त। हम एंजियोग्राफी भी करवा लें तो आर्टरीज में ब्लॉकेज तो आ जाएगी, कितनी काम वासना है ये नहीं मालूम चलेगा। और एंजियोग्राफी की रिपोर्ट में आ भी जाएगी आपका हार्ट तो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन काम वासनाओं से वो कभी भी स्वस्थ नहीं है, हृदय का रोग है। इस जब तक ये रोग हमें लगा रहेगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। काम वासनाओं से वास्तव में काम वासनाएं अक्सर जब बोलते हैं लस्टी डिजायर्स या काम वासनाएं तो लोग सोचते हैं केवल मैथुन की इच्छा। काम वासना की परिभाषा ये है, भौतिक इच्छा की परिभाषा ये है कि कैसी कोई भी इच्छा जो कि भगवान की इच्छा के अनुकूल ना हो वो भौतिक इच्छा है, वो काम वासना है। हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं, जीवात्मा है। जीवात्मा के पास केवल एक ही शक्ति है, इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा शक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं और भगवान से दूर भी हो सकते हैं। तो किसी भी चेतन वस्तु का लक्षण होगा कि वो इच्छा कर सकता है। जड़ वस्तु कोई इच्छा नहीं कर सकती, कोई चेतन वस्तु कॉन्शियस बीइंग ही कोई इच्छा कर सकता है। तो हम सब भगवान की शक्ति हैं, चेतन शक्ति हैं और भगवान के अंश भी हैं। जब हम बोलते हैं कि जीवात्मा कृष्ण का अंश है तो इसका मतलब हम ये नहीं लेना चाहिए कि कृष्ण परम भोक्ता है तो हम भी कुछ मात्रा में भोक्ता बन सकते हैं। कृष्ण की 16108 रानियां थी तो हमारी 2-3 रानियां हो सकती हैं। कृष्ण रासलीला करते थे तो हम भी कुछ पराकी अभाव में अवैध संबंध रख सकते हैं, कुछ एक या दो अफेयर चल सकता है, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण परम सृष्टि के रचयिता, परम सृष्टि के मालिक हैं। हम एक छोटे से एलआईजी फ्लैट के प्रोप्राइटर हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो हम कृष्ण के अंश हैं तो थोड़ा बहुत तो भोक्ता हमें भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में हमें जाना पड़ेगा सिद्धांतिक रूप से हम सब कृष्ण के अंश शक्तिमान रूप में नहीं, शक्ति के रूप में हैं। शक्तिमान रूप में हम कृष्ण के अंश नहीं हैं। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं कि हम एक जीवात्मा घास के तिनके का भी भोग नहीं कर सकता। भोग करना हमारी प्रवृत्ति है ही नहीं। थोड़ा सा भी भोग करने का प्रयास करेंगे वो हमारे दुख का कारण बनेगा। इस संसार में जब भोग करके हम अपने आप को एंजॉय करते हुए पाते हैं कि बहुत आनंद आ गया, बहुत अच्छा खाया, बहुत अच्छा मैथुन हुआ, बहुत सी चीज देखने को मिल गई, वास्तव में इस संसार में एंजॉयमेंट नहीं है। जो हमें लगता है कि हम सुख पा रहे हैं या खुशी पा रहे हैं वो वास्तव में आगे आने वाले भविष्य में दुखों के बीज है, वो सुख नहीं है, यही माया है। हमें दिखाती है ये सुख है, वो सुख है ही नहीं। आप सबकी आयु यहां पर कम से कम 20-25 साल तो सबसे है, उसके बाद काफी सब उम्र में ऊपर उठ गए हैं, तो सबका अनुभव तो है ही। जब भी हम भोग करते हैं उस समय लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, लेकिन बाद में लगता है कि यही जो एंजॉयमेंट थी हमारे दुख का कारण बनती है। यही संस्पर्श जब भोगा दुख योनिया ए मते आदि अंत अंत कुंते ना तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि ये आनंद नहीं, ये दुख है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर उसको सुख मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो दुख होता है। तो हमारी रचना, हमारा स्वभाव यही है कि हम कभी भोग नहीं कर सकते। हम भगवान के अंश शक्ति के रूप में हैं और शक्ति का केवल एक ही कार्य है कि शक्तिमान की सेवा करें। इसलिए ये काम वासनाओं के होते हुए हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का अर्थ है कि हमें कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। सौ इंद्रिय प्रीति वांछित तार वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछित धने प्रेम नाम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना वो काम कहलाता है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना वो प्रेम कहलाता है, और काम प्रेम की विकृत रूप है। तो भक्ति के माध्यम से हम इस काम से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सबको ये ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा कि अपनी इंद्रियों की संतुष्टि ना करके हम कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि करें, और इसी प्रशिक्षण को लेते लेते हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ये प्रशिक्षण हर बुद्धिमान व्यक्ति को प्राप्त करना अति आवश्यक है। 5 वर्ष की आयु से ही ये प्रशिक्षण शुरू हो जाना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करना, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना है। जब कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण की प्रसन्नता से ही जीव प्रसन्न हो सकता है। जीव स्वतंत्र होकर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, और जब हम स्वतंत्र होकर होने की इच्छा करते हैं तो वो काम वासना कहलाती है और वो हमारे दुखों का कारण बनती है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के आमुख में ही बताते हैं कि भगवद गीता का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट क्या है, कि हमने लोगों को यह शिक्षा देनी है कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट ना करें जबकि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करें। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता। और जो कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन है इसी बात का प्रचार कर रहा है कि हम अपने इंद्रियों को संतुष्ट न करके कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करके इस पूरे संसार में शांति ला सकते हैं। तो भक्ति की परिभाषा ही नारद पंचरात्र में ये बताई गई है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्व निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, कि सभी उपाधियों से मुक्त होकर हम भगवान की अपने इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें। इसमें अपने ही संतुष्टि की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें भक्ति गोपियों के का अनुसरण करते हुए करना चाहिए। तो गोपियां किस तरह से हर परिस्थिति में भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचती थी, हर परिस्थिति में। जब अक्रूर मथुरा से वृंदावन आते हैं और कृष्ण बलराम को ले जाते हैं कंस के पास, तो सभी गोपियां विरह में होती हैं। तो विरह में होकर वो कृष्ण को पुकारती हैं, जो जो कृष्ण ने लीलाएं की उसकी वो नकल करती हैं और एक दूसरे को सांत्वना देती हैं। और भागवतम के दशम स्कंध में उस गोपी गीत का बहुत सुंदर वर्णन भी आता है। तो सुनने में दिखने में लग सकता है कि गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं विरह में कि वो आए हम उनसे मिल सकें, जिससे कि गोपियां संतुष्ट हो जाएं। तो कोई कहेगा ये तो सेल्फलेस नहीं हुआ, गोपियां अपनी संतुष्टि के लिए कृष्ण को पुकार रही हैं। तो वास्तव में विरह में जो गोपियां गीत गा रही हैं कृष्ण को पुकार रही हैं, क्योंकि गोपियां ये जानती हैं कि हमारी उपस्थिति के बिना कृष्ण प्रसन्न रह ही नहीं सकते, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमारी उपस्थिति होना अति अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण आप हमारे बीच में नहीं हो आप कैसे संतुष्ट होगे, इसलिए आप आइए ताकि हम आपको संतुष्ट कर सके। तो गोपियां विरह में भी कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में सोच रही हैं। तो ये है वास्तव में प्रेम, अपनी पूरी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। श्रीला प्रभुपाद जी ने ये जो हमारे को पूरा पैकेज दिया था, आप देखिए शुरू से लेकर सुबह से लेकर रात तक हम सेवा में लगकर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इस प्रोसेस को बिल्कुल रूटीन लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमें जो रस प्राप्त होना चाहिए वो रस प्राप्त नहीं हो रहा। जब तक हमें भक्ति में ये रस प्राप्त नहीं होगा हम इन काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हिज होलीनेस दयानंद स्वामी महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि जब हम भक्ति प्रारंभ करें, भक्ति शुरू करें, दिन शुरू करें, तो बहुत हमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बहुत उत्साह के साथ हमें भक्ति की प्रत्येक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले हमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि कल मंगल आरती अटेंड करनी है, सुबह 3:30 बजे उठना है, जल्दी जल्दी आकर शंख बजने से पहले यहां उपस्थित हो जाना है और जैसे जैसे दर्शन खोलेंगे धीरे धीरे चरणों से भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान ने कौन से कलर की ड्रेस डाली होगी, कैसा श्रृंगार होगा, ये एक्साइटमेंट होने चाहिए। और फिर जैसे दर्शन खोलें बहुत ही एक्साइटेड होकर हमें दर्शन करने चाहिए, बहुत ही उत्साहपूर्वक नाचना चाहिए। और फिर जब करने का समय आए ओहो हरे कृष्ण संघर्ष 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 कब खत्म होगा, माला बार बार एक तो उसमें हम लगे रहते हैं। लेकिन एक तरह से करना ही है क्योंकि गुरु जी को हम वचन दे चुके हैं प्रतिदिन 16 माला, एकादशी के दिन 25 माला करेंगे ही, तो क्यों ना उत्साहपूर्वक किया जाए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में किया जाए, पहले रात से तैयारी शुरू कर दी जाए। मैं जप करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा। रूप गोस्वामी कहते थे कृष्णा, ये शब्द ऐसे हैं जब मेरे कानों में प्रवेश करते हैं तो 2 कान बहुत कम पड़ते हैं। ऐसा कौन सा मार्केट है, ऐसा कौन सा बाजार है जहां करोड़ों कान मिले जिससे मैं कृष्ण का नाम सुन सकूं, ऐसी कौन सी मार्केट है यहां की करोड़ों करोड़ जीवा मिले ताकि मैं कृष्ण का नाम ले सकूं। जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र करता हूं राधा कृष्ण मेरे जीवा पर नाचते हैं और मेरी सारी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती हैं। इसका स्मरण करके हम करें और एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम देखेंगे जब इस उत्साह से हम भक्ति की क्रियाओं का पालन करते हैं। हमें उत्साहित होना चाहिए कि अब वो समय आ रहा है कि अब इंद्रियों के द्वारा मैं कृष्ण का संपर्क कर सकता हूँ, कृष्ण को छू सकता हूँ, कृष्ण को देख सकता हूँ, कृष्ण को सुन सकता हूँ, कृष्ण का आस्वादन कर सकता हूँ। 9 बजने वाले होते हैं, बड़ी एंटिसिपेशन होती है, हाँ प्रसाद आने वाला है। उसी ढंग से हमारा एंटिसिपेशन होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि 7:30 होने वाले हैं दर्शन आरती, गोविंदम आदि पुरुषम, किस ढंग से हम भगवान का श्रृंगार देखेंगे। इस ढंग से अगर हम भक्ति की प्रत्येक क्रिया का पालन करें, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो बोलो ठीक है, रेस्ट करने का समय आ गया, सुबह से जागे हुए हैं, कहीं कोने में बैठ के थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा सो लिया, थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा सो लिया, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रहे हैं, अच्छा रेस्ट भी हो गया, अच्छा श्रवण भी हो गया, मन शांत हो गया और प्रसादम का समय नहीं। जब भागवतम सुन रहे हैं तो इच्छा से सुने कि एक एक शब्द मेरी हर समस्या का समाधान करने वाला है, बहुत ही उत्कंठा के साथ हमें सुनना चाहिए। तो क्यों नहीं हमारे हृदय के अंदर ये काम का रोग है, ये अपने आप पीड़ित होगा। जब भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करता है तो काम वासनाएं पीड़ित होती हैं, दे आर टॉर्चर्ड, और फिर हम इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम अपने इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा कर सकते हैं, इसलिए देवानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि जब हम भगवान के दर्शन करने आए तो ऐसे दर्शन करें जैसे कृष्ण को घूर रहे हो, घूरने जाएं, हटे नहीं वहां से, घर में पति और पत्नी बैठे और एक दूसरे को देखते रहे ऐसे, हाँ? क्या बात है, क्या दिक्कत क्या आपको क्या चक्कर, क्या चाहते क्या हो। राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप खड़े रहिए ऐसे, फेस्टिवल्स में नहीं जन्माष्टमी के दिन खड़े हो गए सामने, आपने बोला था घूरना है, फेस्टिवल दिन आगे बढ़ी है, लेकिन घूरते रहे। अपने शेड्यूल में महाराज जाते हैं समय निकालिए, 24 घंटे में से कम आधा घंटा निकालिए, 15 मिनट निकालिए कि मैं भगवान को देखने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बताते हैं कि हमारे हृदय में जो काम प्रवेश करता है आंखों के माध्यम से, अब आंखें तो देखना चाहती हैं, कोई भी सुंदर रूप सुंदर वस्तु देखना चाहती हैं, तो कैसे हम इस आंखों की इस प्रवृत्ति को शांत कर सकते हैं, भगवान के सुंदर रूप कर देखकर। भगवान परम शक्तिशाली, ये नहीं कि वो सृष्टि की रचयिता करते हैं, महाविष्णु लेटे हुए हैं एक श्वास लेते हैं तो असंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, इसमें भगवान की शक्ति नहीं है। भगवान परम शक्तिशाली है क्योंकि जैसे ही भगवान बंसरी बजाते हैं यमुना जी अपना प्रवाह करना बंद कर देती हैं, जैसे भगवान की बंसी की ध्वनि बछड़े सुनते हैं वो गाय का दूध पीना बंद कर देते हैं। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा पुस्तक में, जैसे पेंटिंग होती है ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाता है, ये भगवान के बंसरी की शक्ति है, ये भगवान की सुंदरता की शक्ति है। तो जब हम भगवान को देखें तो घूरते रहें, घूरते रहें, घूरते रहें, इससे क्या होगा, इस संसार की सारी वस्तुएं हमें फीकी लगेंगी। श्री रूप गोस्वामी बात बताते हैं ना कि कहां मत जाना, केशी घाट, क्यों, वहां पे कौन मिलेगा आपको, कौन खड़ा है वहां पे, श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में, क्या है उसके हाथ में, वंशरी, सर पे क्या है, मोर पंख, टेढ़ा होकर खड़ा है, उसकी गलती से भी मत देखना, क्या हो जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। तो आप घूरने आएंगे यहां पे सब कुछ छूट जाएगा, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए केवल कृष्ण ही हमारे हृदय में पड़े इस काम का इलाज कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों में रामनवमी का अवसर उत्सव आ रहा है, तो रामनवमी के दिन भगवान राम प्रकट होते हैं और भगवान रामलीला करके रावण का वध करते हैं। रावण जो है वो काम का मूर्ति रूप है, और हमारे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा है इसका मतलब हमारे हृदय में रावण है। और जब रामलीला में देखते हैं भगवान राम रावण का एक सिर काटते हैं तो क्या होता है, उसका दूसरा सिर निकल आता है। इसी ढंग से हम एक भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं दूसरी भौतिक इच्छा आ जाती है, फिर उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं फिर दूसरे से एक भौतिक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो ये चलता रहता है। भगवान राम रावण का एक सिर काटते हैं दूसरा सिर आ जाता है, और रावण को लगता था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, फिर अंततः भगवान राम ने क्या किया, रावण के हृदय में तीर छोड़ा, और रावण के हृदय में तीर छोड़ते ही रावण का वध होता है। तो वो जो तीर है जिससे हमारे हृदय में बैठे काम का वध होगा, वो तीर केवल भगवान राम और कृष्ण के पास ही है या उनके प्रतिनिधियों शुद्ध भक्तों के पास है। तो उनकी शरण प्राप्त करके ही हम अपने हृदय में बैठे इस काम का वध कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम देखते हैं भागवतम के सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह बोलते हैं कि बोलो तुम मुझसे क्या इच्छा करते हो, कुछ तो मांगो। तो पहले तो प्रहलाद महाराज मना करते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में ये वणिक का संबंध नहीं होना चाहिए, बनियों वाला काम नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, यदि दासी मे कामान वरा स्वाम वरद दर्श भन कामान ही सरोहम भवतस्तु वरणे वरम। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे, मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे। क्योंकि कोई भी प्रकार की भौतिक इच्छा रहते हुए हम भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रयास नहीं कर सकते। आज पूरे संसार में इतनी तरह की एडवर्टाइजमेंट बम्बार्ड की जा रही है कि हर व्यक्ति कंफ्यूज हुआ पड़ा है। जितनी ज्यादा हमारे हृदय में भौतिक इच्छा होंगी उतने हम डल हेडेड होंगे, उतनी हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप देखिए कंफ्यूज्ड, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयोसे नाम, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उसकी बुद्धि अनंत शाखाओं में अलग अलग दिशाओं में भागती है। ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। पहले का समय बहुत सरल होता था, टूथपेस्ट चाहिए परचून की दुकान पर जाओ एक ही टूथपेस्ट होती लेके आ जाओ। अब वही टूथपेस्ट लेकर मॉल में जाना पड़ता है और उसी मॉल में टूथपेस्ट देखेंगे, हाँ सब हंस रहे हैं, 200 तरह की टूथपेस्ट है, सब अपने अपने दाम दिखा रहे हैं, हरे रंग की, नीले रंग की, पीले रंग की, ट्राई कलर, फोर कलर, कलर अलग करके। बच्चे साथ में पापा ये लो, पापा वो लो, नहीं पापा ये लो, उसको समझ नहीं आता कौन सा टूथपेस्ट लेना, डल हेडेड हो जाता है। एक छोटा सा काम के लिए उसको एक घंटा लग जाता है। अब देखिए इतनी ज्यादा भौतिक इच्छाएं, इतनी ज्यादा ये करूं ना करूं, इतने ज्यादा ऑप्शन, बहुशाखा, एक घंटा तो उसने टूथपेस्ट लेने में लगा दिया, वो क्या हरिनाम लेगा, क्या भगवान के दर्शन। ये प्रैक्टिकल हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल देख सकते हैं। माताजी लोगों कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, इतने ड्रेसेस, इतने ड्रेसेस, कंफ्यूज्ड, क्या करना है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य उसको हम भूल जाते हैं। जितनी ज्यादा भौतिक इच्छाएं होंगी उतने ज्यादा हम मूर्ख बनते जाएंगे। और जितने नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं इससे हमारा और शिला भक्ति सांसद ठगु माप जाते हैं। जो ये मॉडर्न एजुकेशन है तथा कथित आधुनिक विज्ञान है, ये हमें परम सत्य से बहुत दूर लेता जा रहा है। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, और भौतिक इच्छाएं जनरेट करो और कैसे उसकी पूर्ति करो। क्योंकि भौतिक इच्छाएं ऐसे बताया रावण के सिर के समान है, एक को पूर्ति करते हैं दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरे करते हैं तीसरी उत्पन्न हो जाती है। तो इस ढंग से जैसे कई भौतिक इच्छाएं होंगी हम अपने आप को शरणागत नहीं कर पाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेत सा, इस भोग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने से क्या होगा, हमारी चेतना को हर ली जाती है और फिर हम भगवान में अपने मन को नहीं लगा सकते। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ना रहे। तो हमें भी ये प्रार्थना करनी चाहिए किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा ना रहे। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविता म जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो कीत्वई। उसके बाद प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्य निष्ठा समाप्त हो जाते हैं। जिसके अंदर कामों की इच्छा है उसके अंदर पेशेंस, सब्र नहीं रहता, सत्य निष्ठा नहीं रहता, वो इन काम वासनाओं की पूर्ति के लिए झूठ बोलने को तैयार होता है, लज्जा नहीं रहती, समाज में क्या ठीक है क्या गलत है उसकी कोई परवाह नहीं करता, ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, स्मृति खत्म हो जाती है, बल समाप्त हो जाता है, तो वो कैसे फिर वो अपने जीवन को समर्पित कर पाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि हम इससे मुक्ति पाएं। एक भौतिक इच्छा हृदय में उजागर होती है, जीव अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से नीचे गिर जाता है, उसको खो बैठता है और फिर अपने मन, बुद्धि और शरीर से वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता। तो एक भौतिक इच्छा रहने से विशिष्ट प्रभाव जाते हैं, एक चॉकलेट खाने की इच्छा रह गई तो दोबारा से इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। बोले छोटी छोटी इच्छाएं कहीं हृदय कोने में पड़ी हैं, काम बस में कोई ऐसी मैथुन की इच्छा नहीं रहेगी, छोटी छोटी कुछ इच्छाएं हैं, तो वो ही बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ये करताल का वेट कितना होगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी नहीं है, खड़ा रहा ऐसे, अभी तो पेन नहीं कर रहा, अगर मैं 10 घंटे ऐसे खड़ा रहूं तो मेरी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा। छोटी सी इच्छा है 100 ग्राम की, 10 ग्राम, 5 ग्राम की इच्छा है, कई कई जन्मों से पड़ी हुई है कोने में, उसके कारण क्या है वो हमारे लिए पीड़ा का कारण बनेगी। हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक इच्छा बनाए रखना, संभाल के रखना। भगवान की कितनी बड़ी अच्छी माया है, हम सोचते हैं जितनी ज्यादा भौतिक इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा मुझे सुख मिलेगा, जितना ज्यादा मैं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा मैं आनंद में रहूंगा, लेकिन ये भौतिक इच्छाएं हमारे सुख का कारण नहीं है, हमारे दुख का कारण है, इसलिए हमें इनसे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी मुक्ति केवल कृपा से ही हो सकती है, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के माध्यम से। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। करना क्या है, केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, सिंपल। आत्मा के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से हमारा सोचना, हमारी इच्छाएं, हमारी क्रियाएं सबके सब कृत्रिम हो गई हैं, अननेचुरल हो गई हैं। तो हमारे पास ये विकल्प रहता है कि भगवान की शरण लें या माया की शरण लें। बारंबार हम किसकी शरण ले लेते हैं, माया की शरण ले लेते हैं, केवल गलत आदतों के कारण। जब भी हमें मौका मिलता है हम फिर से माया के चंगल में फंस जाते हैं, जब भी मौका मिलता है हम फिर से माया के चंगल में फंस जाते हैं। तो अपनी इस आदत को बदलना है, और इस आदतों को बदल सकते हैं हम भक्तों के संग से और शुद्ध भक्तों की कृपा से। तभी तो यहां कह रहे हैं कि परम ब्रह्मचारी सनत कुमार के प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं काम वासनाओं से बचूं। चार कुमारों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की सेवा दी गई। तो इस भौतिक जगत की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने किसी भी जीव की उत्पत्ति करने से पहले इस भौतिक जगत में पहले वो वातावरण बनाया, क्योंकि इस भौतिक जगत में वही जीव रह सकते हैं जो भगवान को भूले हों, भूली भटकी आत्माओं के लिए भौतिक जगत है। तो वो वातावरण बनाने के लिए जिससे कि जीव भगवान को भूल कर यहां रह सके, तो ब्रह्मा जी ने पहले 5 तरह की अज्ञानताएं उत्पन्न की। वो 5 तरह की अज्ञानताएं, जैसे जीव हमेशा कृष्ण को भूला रहता है, सबसे पहले आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, दूसरा मृत्यु का भाव कि अभी मरा, मृत्यु का भय बना रहता है, तीसरा हताशा के बाद क्रोध, एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, हताशा के बाद क्रोध, चौथा मोहमय शारीरिक धारणा, शारीरिक धारणा है कि मैं शरीर आत्मा नहीं यह देह हूं, और पांचवा मिथ्या स्वामी भाव, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप। तो ये 5 तरह की अज्ञानताएं पहले ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की, जिससे एक बद्ध जीव इस संसार में रहकर कृष्ण को भूलकर भोगने का प्रयास कर सके। तो ये सब करने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे, थैंकलेस टास्क था, ये क्या कर दिया मैंने, एक भक्त ऐसा काम थोड़ी करेगा जिससे जीव भगवान को भूल सके। तो इससे बाहर निकलने के लिए ब्रह्मा जी ने ज्ञान के 4 सिद्धांत बनाए। ज्ञान के 4 सिद्धांत थे सांख्य, जिससे वो देख सके क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या सनातन है, क्या नश्वर है, क्या शाश्वत है, सॉरी जो नष्ट होने वाला है और क्या शाश्वत है, सांख्य। दूसरा योग, तीसरा वैराग्य और चौथा तपस्या, ये ज्ञान के 4 सिद्धांत। और इन ज्ञान के 4 सिद्धांतों के लिए उन्होंने 4 कुमारों की उत्पत्ति की, सनत, सनातन, सनत और सनत कुमार। तो इन 4 कुमारों ने इन 4 ज्ञान के सिद्धांतों में श्रेष्ठता साबित की। लेकिन जैसे इन 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई, इन्होंने कहा ब्रह्मा जी हम इस सृष्टि की रचना में आपका सहयोग नहीं देंगे, हम इस चक्कर में फंसने वाले नहीं है। वो इतने ज्यादा केयरफुल थे कि उन्होंने योग विद्या से ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि उनका शरीर 5 वर्ष की आयु से ऊपर बढ़ा ही नहीं। बोल जैसे ही शरीर बड़ा होगा तरह तरह की काम वासनाएं आएंगी और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन होंगी, हम बड़े ही नहीं होते। तो योग सिद्धि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को 5 वर्ष तक ही रोक लिया, और बोले जब छोटे बच्चे हैं तो कपड़े डालने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से घूमेंगे, तो शरीर में कोई कपड़े नहीं, और किसी भी जगह में वो आराम से विचरण कर सकते थे। तो अपने आयु उन्होंने 5 वर्ष तक ही रख ली कि कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मा जी को बोला, क्षमा करें पिताजी, हम सृष्टि की रचना में आपका सहयोग नहीं देंगे। तो ये सनत कुमार जो परम ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनसे हम प्रार्थना करें, उनकी हम शरण ग्रहण करें। इसी ढंग से इसी श्लोक में नारद मुनि का वर्णन आया है। तो नारद मुनि जी बताया गया भागवतम में, जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की उत्पत्ति की और उन्होंने उनका आज्ञा का पालन नहीं किया तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। तो ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से किसकी उत्पत्ति हुई? शिव जी की। शिव जी को बोला गया तो शिव जी ने सृष्टि की रचना शुरू कर दी। कैसे सृष्टि की रचना शुरू कर दी? भूत प्रेत पिशाच धड़ाधड़ उत्पन्न होने लगे। मतलब रुको 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 रुको, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, रुको रुको रुको, आप जाओ कहीं मन में तपस्या करो, बहुत हो गया। फिर ब्रह्मा जी ने फिर से ध्यान लगाया और मरीचि आदि कई ऋषियों की उत्पत्ति की, और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी की उत्पत्ति की। नारद जी की उत्पत्ति बहुत विशेष है। उत्संग नारदो यज्ञ, जो नारद जी की उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी के दिव्य विचार विमर्श से उत्पन्न हुए, मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने बहुत दिव्य विचार विमर्श किया, उसके बाद नारद जी की उत्पत्ति हुई। इसलिए नारद बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही शुभ हैं नारद, जो सबको नार यानी कि नारायण दे। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कोई कमोडिटी नहीं है कि दे दिया, देने का अर्थ है कि नारद जी भक्तों को भगवान की सेवा देते हैं, भक्ति देते हैं, जिससे कि वो कृष्ण को प्राप्त कर सके। तो नारद मुनि और सनत कुमार जी से यहां प्रार्थना की जा रही है कि नारद मुनि से यह प्रार्थना की जा रही है कि अर्चना विधि में हमसे जो अपराध होते हैं उससे हम क्षमा करें, और सनत कुमार जी से यह प्रार्थना की जा रही है कि हमारी काम वासनाओं से हमारी रक्षा करें, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। भक्ति के मार्ग में ब्रह्मचार्य का पालन करना अति अनिवार्य है, और ब्रह्मचार्य का पालन प्रत्येक जीव को करना है, केवल ब्रह्मचारी और सन्यासियों को नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को भी ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा, तभी हम भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में स्त्री और पुरुष आपस में नहीं मिल सकते। गृहस्थ आश्रम में यह अनुमति दी गई है, स्त्री और पुरुष आपस में संग कर सकते हैं, लेकिन वो भी नियमों के आधार पर, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री और पुरुष आपस में संग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर स्त्री पुरुष संग करते हैं तो उसको अवैध माना जाएगा, वो ब्रह्मचार्य नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचार्य का अर्थ है केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करना। तो इस तरह से अगर हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो इस ब्रह्मचार्य के पालन से हमें बहुत शक्ति प्राप्त होती है, बहुत बल प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये 4 जो प्रिंसिपल्स बताए गए, अवैध संबंध ना करना, झूठ ना बोलना, मांसाहार ना करना, किसी प्रकार नशा ना करना, अगर इन 4 नियमों का हम सख्ती से पालन करते हैं तो हमें एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है, हमारी दृढ़ता बढ़ती है। और जब भी हम इन 4 नियमों में से किसी को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा उत्साह कम हो जाता है, हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। तो हर परिस्थिति में हमें इन 4 नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अगर हमने दीक्षा के समय जो गुरु को वचन दिया है आजीवन उसका हम पालन करेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप से आप भगवत धाम वापस चले जाएंगे। ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और प्रैक्टिकल सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद की कृपा से हम भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन हम लोग कुछ वर्षों के बाद ढीले पड़ जाते हैं और थोड़ा बहुत नियम में कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। आज के इस कामुक वातावरण में कैसे हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं? ब्रह्मचारी आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस भक्ति योग में बहुत शक्ति है, और खासकर चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में बहुत शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, कि हम राधा कृष्ण का खूब गुणगान करें, उससे क्या होगा, हमारे हृदय में बैठा हुआ जो काम है ये ध्वस्त हो जाएगा। और हमारे हृदय में बैठा हुआ काम नहीं है, जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारा ही नहीं बल्कि जो जीव भी इस हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन सुनेगा, इसमें भाग लेगा, वो अपने काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करेगा। ये हमने प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। बस इस प्रोसेस को हमने उत्साह से इसका पालन करना है। निश्चित रूप से संभव है। इतिहास में हम शास्त्रों में देखते हैं, विश्वामित्र का उदाहरण है, सौबरी मुनि का उदाहरण है, इन्होंने योग किया, अकेले थे, यमुना जी के नीचे चले गए सौबरी मुनि, वहां भी अपनी कामवासनाओं को नहीं रोक पाए। विश्वामित्र ने 60,000 साल तक तपस्या की, फिर अपनी कामवासनाओं को नहीं रोक पाए। लेकिन संकीर्तन आंदोलन में इतनी शक्ति है कि हम भक्तों के संग में होते हैं और जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं, तो उसके माध्यम से हम अपनी कामुक वासनाओं को रोक पाते हैं और इसके ऊपर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय का अर्थ है इस वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, माया के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो इसमें उत्साह से हमें भाग लेना होगा और हमेशा भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। चैतन्य लीला में वर्णन आता है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो उनके साथ उनके एक सेवक थे, क्या नाम था उनका, काला कृष्णदास। तो सभी भक्तों ने निवेदन किया, नित्यानंद प्रभु ने सर्वम भट्टाचार्य ने इसको साथ में ले जाओ, बहुत साधारण सा ब्रह्मचारी है, तो साथ में चले गए। तो घूमते घूमते जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उनकी वहां पे भेंट भट्टहरी लोगों से हुई। भट्टहरी कुछ ऐसे थे जो कि धोखेबाज लोग थे, चोरी करते थे, लोगों को धोखा देते थे और सन्यासी वेश धारण करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु और काला कृष्णदास वहां पे पहुंचे तो सुबह सुबह एक बार चैतन्य महाप्रभु उठे तो देखा काला कृष्णदास नहीं है, तो उनको लग गया कि ये भट्टहरी के ग्रुप में गया होगा। तो वहां की जो स्त्रियां थी उन्होंने काला कृष्णदास को अपने प्रति आकर्षित कर लिया था। काला कृष्णदास बेचारे एक सरल से ब्रह्मचारी थे, उनकी बातों में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो बोला कि आपने मेरे इस ब्रह्मचारी असिस्टेंट को अपने पास रखा है, इसको वापस दो। बोला आप भी सन्यासी हो और मैं भी सन्यासी हूं, तो ये ठीक नहीं है। तो बोला नहीं, हम नहीं देंगे। उन्होंने अपने अस्त्र निकाल लिए और अस्त्रों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु पे प्रहार करने लगे। तो महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, जो अस्त्र उन्होंने महाप्रभु पर छोड़े थे वही उल्टे हो गए और सारे भट्टहरी के ऊपर आने लगे और भट्टहरी को सब काटते हुए वास्ते इधर पूरे उनके जब कैंप में भगदड़ मच गई तो सबके सब इधर भागने लगे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को चोटी से पकड़ खींच के लाए। तो इस ढंग से शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अभी भी चैतन्य महाप्रभु इस कृष्णा भावनित आंदोलन का पर्सनल निरीक्षण कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर रहे हैं और एक एक भक्त की चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से रक्षा करते हैं। बोलेंगे मैं तो भी नया हूं, नए से नया भक्त भी क्यों ना हो, वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक भक्त की रक्षा करते हैं। तो महाप्रभु उसको चोटी से पड़क खींच कर ले आए, तब तो बाहर ले आए। जब वापस वो जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो सब भक्तों को बुलाया, बोला ले लो भैया इसको, अजीब सा व्यक्ति है, मेरे साथ गया और वहां भट्टहरी के पास चला गया, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ले जाओ। जब काला कृष्णदास को यह मालूम चला कि भगवान ने मुझे मेरा तिरस्कार कर दिया तो बेचारे रोने लगे। तो क्या करें, परम दयालु नित्यानंद प्रभु, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद, सर्व भट्टाचार्यों ने आपस में मीटिंग किया, इष्ट गोष्ठी किया, क्या किया जाए इस भक्त का, इतना शरारती है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, किसी भी हालत में ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा से वंचित ना रहे। बोले वहां पे नवद्वीप में सारे सारे भक्त परेशान है, 6 सालों से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में है, कोई खबर नहीं है, तो बेचारे उन तक भी खबर पहुंचानी चाहिए, क्यों ना काला कृष्णदास को सच्ची माता के पास भेजा जाए। तो अगले दिन सुबह नित्यानंद पहुंच जाते हैं महाप्रभु के पास, देखिए नवद्वीप में सारे भक्त लोग बहुत चिंतित हैं, आप कहें तो किसी भक्त को भेज दें। महाप्रभु ने जो चाहना करो, बोले ठीक है। उन्होंने काला कृष्णदास को भेज दिया। इसलिए भक्तों की कृपा से काला कृष्णदास भगवान की सेवा में लगे रहे। वो सबसे पहले सच्ची माता के घर में गए, उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया, फिर श्रीवास आंगन में गए, फिर अद्वैताचार्य के घर में गए, सारे के सारे वैष्णव एकत्रित हो गए वहां पर और वहां पर 2-3 दिन का फेस्टिवल हो गया काला कृष्णदास जी के समाचार से। तो अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा होती रहेगी। जब भी हम संकीर्तन करें तो किसी न किसी भक्त के साथ रहें। भक्तों का जीवन में कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होनी चाहिए। जहां हमें प्राइवेट लाइफ के कुछ अकेलापन चाहिए वहीं माया आकर घेर लेगी हमें। उदाहरण देते हैं ना कि जो भेड़ियों का भीड़ होती है उसमें से एक भेड़ भी अलग से निकल गई तो शेर उसी को पकड़ता है। सब कुछ ठीक चल रहा है जंगल में, सब सेफ है, सब इकट्ठे जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब थोड़ा आराम करते हैं, अलग से हो जाते हैं तो तभी शेर आकर पकड़ता है। विशेषकर जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमारा अकेलापन बढ़ता रहता है, हमें और सावधान होना चाहिए। उदाहरण देंगे, भक्ति में आगे बढ़ने का अर्थ है पेड़ पे चढ़ना, और जैसे जैसे हम पेड़ के ऊपर जाएंगे शाखाएं और पतली होती जाती है, पतली शाखाओं में पैर रखेंगे अभी गिरे, तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु थे, गंभीरा में रहते थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ, बहुत सुंदर भाववेश का आदान प्रदान करते थे, तो महाप्रभु कभी भी कुछ भी कर लेते थे। तो एक बार महाप्रभु यामेश्वर मंदिर में जा रहे थे, तभी उनको जगन्नाथ मंदिर से बहुत सुंदर आवाज सुनाई दी। एक देवी दासी थी जो कि जयदेव गोस्वामी जी का गीत गोविंद गा रही थी, बता रहता है गुज्जर का राग में, गुजरी राग होता है उसमें देवीदासी वो राग गीत गा रही थी, तो महाप्रभु को बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। तो महाप्रभु ने ये नहीं सोचा कि पुरुष गा रहा है कि स्त्री गा रहा है, बस महाप्रभु उस गायक से मिलना चाहते थे और बहुत जोर से भाग पड़े। तो जब भाग पड़े तो पीछे पीछे उनके असिस्टेंट थे गोविंद, वो महाप्रभु के पीछे भागे। अब महाप्रभु भावावेश में कितनी तेजी से दौड़े होंगे, और ऐसे दौड़े थे कि आसपास कांटे वाली झाड़ियां तो उनके बीच में से होते निकल रहे हैं और पीछे से गोविंद मार्ग भाग रहे हैं। तो महाप्रभु उस देवीदासी के पास पहुंचे, उसका आलिंगन ही करने वाले थे, तो गोविंद पूछे, नहीं महाप्रभु स्त्री है, स्त्री है, स्त्री है, रुक जाओ। तो जैसे स्त्री सुना शब्द, महाप्रभु तुरंत बाहरी चेतना में आ गए। फिर महाप्रभु, कोई भी वैष्णवी होती थी, स्त्री होती थी, उनसे बहुत दूर रहते थे, और किसी स्त्री को प्रणाम भी करना होता था तो दूर से प्रणाम करती थी। तो गोविंद ने नोक पकड़ लिया, अरे स्त्री है महाप्रभु। स्त्री सुनते ही महाप्रभु भारी चेतना में आ गए, बोले गोविंद तुमने मेरी रक्षा कर ली, अगर मैंने इस स्त्री के देह को छू लिया होता तो मैं मर गया होता। तो गोविंद ने बोला, रक्षा मैंने नहीं की, रक्षा जगन्नाथ जी ने की। तो फिर महाप्रभु ने बोला, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना और हमेशा मेरी रक्षा करना। तो यहां पर संदेश दे रहे हैं कि भक्तों को कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए, ना ही प्रचार में बाहर निकले, ना ही अकेले रहें। ये संकीर्तन आंदोलन है, हमेशा संग में रहें। संग में रहने के बहुत फायदे हैं। कई बार हम भक्तों के संग में होते हैं तो हमारी इच्छाएं भी होती है, उसको दबाना पड़ता है, ये क्या सोचेगा, सारी इमेज खराब हो जाएगी। जूनियर के साथ जा रहे हैं तो और नहीं, हमें एक आदर्श व्यवहार रखना है। इक्वल्स के साथ जा रहे हैं तो नहीं, मैं इससे बेटर हूं, इससे कम थोड़ी हूं, मैंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है। और सीनियर्स के साथ जा रहे हैं तो वैसे कुछ कह ही नहीं सकते, चुपचाप रहो। तो तीनों ही श्रेणी के भक्तों के संग में अगर हमारे हृदय में काम इच्छाएं हैं भी, तब भी हम कंट्रोल में रहेंगे। और अगर अकेले पड़ गए तो क्या फर्क पड़ता है, माया बोलेगी चखले थोड़ा सा, कोई भी नहीं आसपास, थोड़ा सा। प्रभुपाद कहते हैं एडल्टरी ऑफ टंग, जीवा का व्यभिचार। चलो थोड़ा सा आइसक्रीम खा लें, थोड़ा सा ये खा लें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम भक्तों के संग में रहेंगे तो संकोच करके ही अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे। बहुत बड़ी देखा गया, आप सबका भी अनुभव होगा इससे। तो इसलिए हमेशा हम भक्तों के संग में रहें, और भक्त लोगों की प्रार्थना से ही हम इससे बच सकते हैं। ये समस्या, काम वासनाओं की समस्या, सृष्टि के प्रारंभ से ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने उनके हृदय में सारे दिव्य वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया, क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी पुत्री वाक की रचना सृष्टि की, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही आकर्षित हो गए, अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे। तो सारे के सारे जो मरीचि थे और आदि ऋषिगण थे, उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई, अरे भैया हमारे पिताजी जो सब वेदों के ज्ञाता है, वेद गर्भ बोला जाता है इनको, वेदों का गहरा ज्ञान है इनको, क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को रोका, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ब्रह्मा जी को कोई समझ नहीं आ रही। फिर क्या किया महर्षि आदि ऋषियों ने, तो फिर बहुत सुंदर संदेश है। तो महर्षि आदि ऋषियों ने क्या किया, फिर उन्होंने फिर भगवान की शरण ग्रहण की, और फिर उन्होंने तस्मै नमो भगवते या इदम स्वेन रोचिषा आत्मस्तम व्यंज्या मास स धर्म पातुर मरहती। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया, वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। तो उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना की कि आप ये कृषि कीजिए, आपके ही पुत्र हैं ब्रह्मा जी, इनकी हालत बहुत खराब है, आप इनकी रक्षा कीजिए। तो मरीचि आदि ऋषियों की इस प्रार्थना से ब्रह्मा जी को कुछ बुद्धि का ज्ञान हुआ, भगवान ने उनके हृदय में बुद्धि दी कि अरे गलत है, फिर ब्रह्मा जी ने अपने आप को रोका। तो हम जब देख सकते हैं किसी भक्त की स्थिति ठीक नहीं चल रही क्योंकि माया बहुत प्रबल है, कभी भी हम अपने मार्ग से च्युत हो सकते हैं, तो हमें उस भक्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार किसी तरह का परामर्श भी कार्य नहीं करता, तो फिर हम क्या करें? नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें, बलराम जी से प्रार्थना करें, षठ गोस्वामियों से प्रार्थना करें कि उन भक्त की रक्षा करें। हम हृदय से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से सारे के सारे आचार्य गण और भगवान हमें कृपा देने के लिए तैयार बैठे हैं। दिक्कत यह, हम कृपा मांगते ही नहीं है। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन आपका, पतितों का उद्धार करने के लिए आपका उद्धार है, लेकिन अपने आपको पतित तो मान लो। हम लोग पतित ही नहीं मानते तो हमारे लिए अवतार भी नहीं है चैतन्य महाप्रभु का। तो सारे आचार्य गण हमें कृपा देने को तैयार बैठे हैं, हमें केवल कृपा की याचना करनी है। गौतम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं? श्री रूप सनातन भट रघुनाथ, सनातन भट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट दास रघुनाथ, इच्छाएं गोसाई करे चरण वंदन, इच्छाएं गोसाई करे चरण वंदन, जारे कृपा जहां होते विघ्न नाश अविष्ट पुराण, जहां होते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। षट गोस्वामी की हम शरण ग्रहण करें। श्री प्रभुपाद बताते हैं कोई भी संन्यास धर्म का पालन करना चाहता है या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसको प्रतिदिन इस षट गोस्वामी अष्टकम का कीर्तन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने उनको चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद मुझे कामुक वासनाएं बहुत सता रहे हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा कि मेरा नाम लो, आई विल कम एंड किक द माया विद माई बूट्स, मैं आऊंगा और माया को अपने जूते से मार के बाहर भगा दूंगा। तो जब भी हम ऐसे परेशान भी हो षट गोस्वामियों को पुकारें, भक्तों को पुकारें, प्रभुपाद को पुकारें, अपने आसपास के भक्तों को फोन कर दें, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, निश्चित रूप से हमने देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, भक्तों के संग इसमें शर्म संकोच की बात नहीं है। निश्चित रूप से भक्तों की शरण ग्रहण करने से हम इस सब माया से बच सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन बहुत शक्तिशाली है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई का उदाहरण किया। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं नित्यानंद प्रभु के एक सेवक ने लाखों जगाई मधाइयों का उदाहरण किया। बोलते ये कैसे संभव है, नित्यानंद प्रभु ने एक जगाई मधाई का उदाहरण एक उद्धार किया लेकिन उनके सेवक ने लाखों जगाइयों बधाइयों का उद्धार कर दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं ये गुरु परंपरा की शक्ति है, डिसाइपलिक सक्सेशन गुरु परंपरा की ये शक्ति है। इसलिए हम अपने आप को कमजोर ना समझें, अगर हम केवल शिक्षाओं का सही ढंग से पालन कर रहे हैं तो हम अपने आप को भी भगवान की इस भयंकर शक्ति माया से बचा सकते हैं और माध्यम बन सकते हैं कई जीवों को इस माया से बचाकर भगवान की शरण में ले जाने का। तो इस ढंग से हम भक्तों और भगवान की शरण की याचना करते हुए जितनी मात्रा में हम भगवान के शरणागत होंगे उतनी ही मात्रा में हम आनंद प्राप्त करेंगे, और जितना हम आनंद प्राप्त करेंगे, असली आनंद प्राप्त करेंगे, उतने हमारे भौतिक आकर्षण कम होते जाएंगे। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न या टिप्पणी है? क्वेश्चन
जैसे अलग अलग भगवान का अलग अलग अवतारों का नाम दिया था, आप ये वाले अवतार इसकी रक्षा करें, ये वाले रिश्ता इसकी रक्षा करें, इसकी रक्षा करें, तो मतलब कोई एक अवतार इज कैपेबल फॉर बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब एक अवतार सब कुछ कर सकते हैं, अलग अलग अवतारों को क्यों याद किया जाते हैं? मतलब कोई अलग कारण है? और खासतौर पर लाइक मान लीजिए कि समबडी इज लाइक डेडिकेटेड डिवोशनल सर्विस, मीन्स की कोई एक पर्टिकुलर भगवान के रूप के प्रति जो है वो समर्पित होते हैं, तो ये क्या मतलब?
हर एक अवतार का अपना एक प्रयोजन होता है। जैसे बताया गया कि कुर्म अवतार मुझे नर्क जाने से बचाए क्योंकि उन्होंने पाताल लोक में रहकर किया, नरसिंह भगवान। तो हर एक अवतार को एक प्रयोजन है, उसी प्रयोजन को उनका गुणगान करने के लिए। अगर हम सर्व कारण कारण कृष्ण है, कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण इंटरफेयर नहीं करेंगे कुर्म अवतार के कार्य में, वो कर सकते हैं। لیکن پھر بھی بھگوان پرسن ہوتے ہیں جب ہم سب اوتاروں کا بھی گنگان کرتے ہیں، تب بھی بھگوان پرسن ہوتے ہیں. ہاں بھکتی میں آگے بڑھتے تو اکیلا پن بڑھنے کا مطلب ہے کہ ایسی پرستھتیاں آ جاتی ہیں کہ جیسے سنیاسی کوئی لوگ ہیں تو کئی بار ان کو ودیش میں اکیلے جانا پڑتا ہے، یا پھر سمجھ لیجیے کوئی اونچا پد پراپت ہوتا ہے تو کئی بار ادھکاشتا سمے ہمیں اکیلے بتانا پڑ سکتا ہے. سیوا ایسی ہو، ہمیں پریاس کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بھکت ہمارے ساتھ رہے. کئی بار ایسے کھن آ جاتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی کے زیادہ چانسز ملتے ہیں، تو اتنا ہی ہمارے لیے پتن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. فزکس میں آپ پڑھتے ہیں نا، ایز یو گو ہائی پوٹینشیل انرجی بڑھ جاتی ہے، اور جیسے پوٹینشیل انرجی بڑھتی ہے انسٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ہمیں بھکتی کے نیموں کا معلوم نہ ہونے کے کارن اپرادھ و انرتھ کر بیٹھتے ہیں. ان انجانے اپرادھوں و انرتھوں کے لیے کیا کوئی نیماولی ہے؟ کیونکہ سن کر تو گیٹ سے باہر جاتے ہی بھول جاتے ہیں. بتا رہے ہیں کہ انجانے میں جو ہم سے اپرادھ ہو جائیں، انرتھ ہو جائیں، اسے کیسے بچا جائے؟ تو نیماولی ہے، تو پرپا بتا رہے ہیں، بھکتی رسامرت سندھو ہے، اس میں بتائے گئے ہیں کہ مندر میں آتے ہیں کس کس نیموں کا ہمیں پالن کرنا چاہیے. تو اگیانتا میں ہم زیادہ دیر تک مت رہیں، شروع شروع میں آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگیانتا میں رہیں، اس کے بعد بھکتوں کے سنگ میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم شاستروں کا ادھیان کریں اور اپنی اگیانتا کو دور کریں. ہم مندر و بھکتوں سے دور ہوتے ہی کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں، بزنس و لوگوں کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں. اس لیے مندر سے ہم باہر بھی جائیں تو پھر ہم بھکتوں کے نردیشوں کو، انسٹرکشنز کو یاد رکھیں، کیسے بزنس میں اب بھکتوں کے ساتھ ویوہار کرنا ہے، یہ سب بھکتی رسامرت سندھو اور انیک گرنتھوں میں بتایا گیا ہے. تو بھکتوں سے ہم اس کا پرامرش لے کر اپنے جیون میں اتارنے کا پریاس کریں. لاسٹ کوشچن.
کالا کرشن داس کو بھگوان نے بھکتوں کی کرپا سے مطلب کھما کر دیا، واپس لے لیا، لیکن چھوٹا ہری داس کو بھگوان نے کھما نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا؟
چھوٹا ہری داس کا کیس الگ ہے. چیتنیہ مہاپربھو یہاں پر ایک آدرش ادھیاپک کے روپ میں آئے ہیں اور اپنی شکشاؤں کو ذرا ستھاپت کر رہے ہیں کہ کیا کیسے ایک ویراگی کا جیون ہونا چاہیے. تو چھوٹا ہری داس سنیاس آشرم میں تھے اور چیتنیہ مہاپربھو کمل کی طرح کومل بھی ہیں اور وجرپات کی طرح کٹھور بھی ہیں. چھوٹا کرشن داس نے، چھوٹا ہری داس جی نے ایک استری کے ساتھ آتمیتا سے بات کی تو اس کے کارن چیتنیہ مہاپربھو کو بہت کرودھ آیا اور مہاپربھو نے ان کا ترسکار کر دیا. لیکن بعد میں جو چھوٹا ہری داس تھے وہ ان کو گندھر کا شریر پراپت ہوا اور ساتھ ساتھ میں تب بھی وہ مہاپربھو کا گنگان کرتے رہے بھگوان کا. تو یہ بھگوان اور بھکت کے بیچ میں ایک آپسی آدان پردان ہے، سمبندھ ہے. بھگوان نے ان کا پورن روپ سے ترسکار نہیں کیا، آنترک روپ سے ترسکار نہیں کیا، لیکن دکھانے کے لیے، شکشا دینے کے لیے یہ ترسکار کیا. بھگوان کی سینسز کو کیسے سنتوشت کریں، کیسے سنتوشت کر سکتے ہیں پریکٹیکلی؟ بھگوان کی سینسز کو کیسے سنتوشت کریں؟ سینٹرل پوائنٹ آف بھگوت گیتا کیسے سنتوشت کریں؟ ان کی آگیاؤں کا پالن کر کے کیا کیا کر کے پریکٹیکلی کیسے کیا کرو گے؟ ارچ وغیرہ کی سیوا کر سکتے ہیں، بھگوان کو ہم بھوگ لگا سکتے ہیں، کوئی بھی کھادیہ پدارتھ کھانے سے پہلے بھگوان کو بھوگ لگائیں. ارچ وغیرہ کے سامنے ہم نرتیہ کر سکتے ہیں، کیرتن کر سکتے ہیں، بھگوان کا سندر سندر شرنگار کر سکتے ہیں. جب بھگوان کو ہم اچھے وستر ڈالتے ہیں، آبھوشن ڈالتے ہیں، تو اپنے لیے اچھے وستر لینے کی، اچھے آبھوشن اکٹھے کرنے کی ساری جو اچھائیں ہیں وہ شانت ہو جاتی ہیں. جب بھگوان کے لیے اچھے اچھے ونجن بناتے ہیں تو اپنے لیے اچھے اچھے ونجن بنانے کی ساری اچھائیں سنتوشت ہو جاتی ہیں. تو بھگوان کے سامنے کیرتن کرنا، بھگوان کا جب گنگان کرتے ہیں تو اپنا گنگان سننے کی ساری اچھائیں سنتوشت ہو جاتی ہیں. اس لیے بھگوان کے ہر اندری کو ہم اس سنگ سے سنتوشت کر سکتے ہیں. پھر بھگوان کی مہیما کا، کرپا کا ہم گنگان کر سکتے ہیں، پرچار کر سکتے ہیں. اس ڈھنگ سے ہم بھگوان کی اندریوں کو سنتوشت کر سکتے ہیں. तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ राशिमद भागवतम की हिताई गौर प्रेमानंदे।